नहीं, वन ऑन्स फल ककड़ी खरबूजा अमरूद जामुन आम पपीता फोर ऑन्स छाछ या दही की लस्सी एट ऑन्स गुड़ टू ऑन्स कारखानों के मजदूरों के वास्ते सस्ती खुराक अनाज गेहूं चावल मक्का इत्यादि 16 ऑन्स दालें 2 ऑन्स भुने चने या भीगे चने नाश्ते में 4 ऑन्स सब्जी हर प्रकार के साग 3 ऑन्स तरकारियां आलू गाजर करमकल्ला भिंडी बैंगन कद्दू इत्यादि 6 ऑन्स फल और मसाला कुचली हुई प्याज टमाटर मूली खीरा गाजर 2 ऑन्स हरी मिर्च जो ताजे नींबू के रस में भिगोई हुई हों इत्यादि और फल जैसे के आम कटहल जामुन अमरूद आदि 2 से 4 ऑन्स तक दूध 8 ऑन्स गुड़ 2 ऑन्स अगर दूध महंगा हो तो दही या मक्खन निकला दूध भी मुनासिब होगा कलाकारों के वास्ते अच्छी खुराक अनाज 16 ऑन्स दालें 3 ऑन्स तरकारियां 8 ऑन्स तेल 1 ऑन्स घी 1 ऑन्स दूध 10 ऑन्स फल 4 ऑन्स मसाले और कच्ची तरकारियां कटी हुई मूली टमाटर खीरे इत्यादि 4 ऑन्स शक्कर या गुड़ 3 ऑन्स खुराक के उचित सम भाग अनाज 14 ऑन्स दालें 3 ऑन्स सब्जी 8 ऑन्स कंद जड़ 3 ऑन्स दूसरी तरकारियां 3 ऑन्स दूध 10 ऑन्स शक्कर या गुड़ 2 ऑन्स तेल घी इत्यादि 2 ऑन्स गर्भवती स्त्रियों के लिए अनाज 7 छटांक दालें 1.5 छटांक बिना पत्ते की तरकारियां बैंगन कद्दू भिंडी आलू गाजर चौलाई सफेद कद्दू 3 छटांक पत्तेदार सब्जियां बंद गोभी सरसों और चने का साग लाल चौलाई संजन 2 छटांक घी या पकाने वाले तेल 1 छटांक दूध 8 छटांक शक्कर या गुड़ 1 छटांक फल 1 छटांक दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए अनाज 7 छटांक दालें 1 छटांक बिना पत्ते की तरकारियां 3 छटांक पत्तेदार सब्जियां 2 छटांक घी या पकाने वाले 1 दूध 10 से 12 शक्कर या गुड़ 1 फल और नारियल 2 मसाले आवश्यकतानुसार बच्चों के लिए उचित भोजन दूध 1 छटांक शक्कर या गुड़ 1 सब्जियां 1 अनाज आदि फलों का रस आधी छटांक 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए दूध 2 छटांक शक्कर या गुड़ 1 सब्जियां 1 6 अनाज 1 छटांक फलों का रस 1 छटांक 5 से 7 वर्ष की आयु के लिए अनाज 2 छटांक दूध 12 छटांक शक्कर या गुड़ 1 छटांक सब्जियां 2 6 फल 1 छटांक 8 से 12 वर्ष की आयु के लिए अनाज 3 से 5 छटांक दूध 8 छटांक दालें आधी पत्ते वाली सब्जियां 1 दूसरी सब्जियां 2 फल 1 6 मक्खन आधी छटांक घी या तेल आधी छटांक शक्कर या गुड़ 1 छटांक 12 से 14 वर्ष की आयु के लिए अनाज गेहूं या चावल 5 से 6 छटांक दालें 1 छटांक पत्तवाली सब्जियां 1 छटांक बिना पत्ते वाली सब्जियां 3 कच्ची सब्जियां 1 छटांक मक्खन आधी घी या तेल आधी दूध 8 6 शक्कर या गुड़ 1 छटांक फल 2 छटांक खुराक में धातुओं और चिकनाइयों की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने के उपाय लोहा 30 से 40 मिलीग्राम कैल्शियम 0.8 से 3.1 ग्राम तक फॉस्फोरस 1.0 ग्राम चिकनाई 6 से 8 ग्राम तक यह कैसे प्राप्त हो सकते हैं लोहा मक्का अखरोट मूंगफली बाजरा सूखे मेवे गेहूं जौ सोयाबीन पालक कैल्शियम दूध सब्जियां रोटी फॉस्फोरस मटर दूध अनाज चिकनाई मक्खन गोला का तेल घी नोट 1 ग्राम 3 रत्ती के बराबर है 1 छटांक 2 ऑन्स के बराबर है खुराक कैसे बेकार जाती है एक उस पानी को फेंक देने से जिसमें चावल या तरकारियां पकाई गई हैं दो बहुत अधिक पकाने या खुले बर्तनों में पकाने से तीन सोडा जो धोने में उपयोग होता था तरकारियों में मिलाने से चार जितना खाया जाता है उससे अधिक पकाने से पांच चावल और अन्य अनाजों को बहुत बारीक पीसने या अधिक साफ करने से छह ऐसे छिलके फेंक देने से जो खाए जा सकते हैं सात चूहों और कीड़ों के कारण जो अनाज ठीक से नहीं रखा जाता आठ जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक खरीद लेने से नौ खाने के लिए प्लेटों में अधिक निकाल देने से दस बड़ी और शानदार दावत करने से 18 जीवन रक्षक पदार्थ तथा उनका विवेकपूर्ण उपयोग आप भोजन प्रयोग में ला रहे हैं उसमें जीवन रक्षक तत्व मौजूद हैं या नहीं आपका भोजन केवल जिह्वा की तृप्ति मात्र के लिए तो नहीं होता अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें से अधिकांश भोजन सामग्री के विवेकपूर्ण चुनाव की ओर समुचित ध्यान नहीं देते जो व्यक्ति भोजन के चुनाव में गलती करता है वह अपने शरीर की हड्डियों मांसपेशियों एवं रुधिर को पर्याप्त बल नहीं प्रदान कर सकता हम मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव और आदतें भोजन इत्यादि एक प्रकार का नहीं हो सकता देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन चलते रहते हैं शरीर की बनावट में अंतर होता है और प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य देखकर ही उसके भोजन के विषय में अंतिम निर्णय होना चाहिए, किंतु फिर भी हम ऐसा भोजन चुन सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी सिद्ध हो। जिस पदार्थ से जीवन रक्षा होती है वही शरीर के लिए उपयुक्त है, शेष सभी त्याज्य हैं। भोजन का निर्णय मनुष्य के कार्य को दृष्टि में रखकर होना उचित है। जो व्यक्ति बौद्धिक परिश्रम में संलग्न रहते हैं उनके निमित्त पौष्टिक पर हल्का सरल सुपाच्य भोजन अपेक्षित है। इसके विपरीत शारीरिक श्रम करने वालों के लिए गरिष्ठ कार्बोज प्रधान घी दूध युक्त भोजन की आवश्यकता है। मानसिक परिश्रम करने वालों के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं वसा और प्रोटीन। जीवन रक्षक भोजन में मुख्य तत्व हैं शाक तरकारियां दूध शुद्ध मक्खन और ताजे सूखे फल। आटा आप कोई ले सकते हैं पर बिना घुने गेहूं का अच्छा है। प्रतिदिन भोजन में एक सलाद का क्रम अवश्य रहे। फल और तरकारियां छिलका सहित ही प्रयोग में लानी उत्तम है। यह मत समझिए कि उपरोक्त रक्षात्मक भोजन महंगा है, कदापि नहीं। इसमें व्यय अधिक नहीं है। अधिक खर्च तो उन वस्तुओं का होता है जिनको हम स्वाद तथा क्षणिक प्रलोभन के वशीभूत होकर खाते हैं। कीमती चीजें हैं मिठाई नमकीन चाट पकौड़ी विविध मांस हलवा पनीर अंडा चाय इत्यादि। क्या जरूरत है कि आपके सुबह के नाश्ते में चाय बिस्किट या नमकीन मिठाइयां इत्यादि हो या दोपहर के खाने में दो अचार मुरब्बे पापड़ गोश्त इत्यादि हो। उत्तम पौष्टिक भोजन में आटा दूध घृत तरकारियां दाल चावल चाहिए। यदि ये चीजें भी महंगी हैं तो इन्हें फिजूल बर्बाद न करें। आवश्यकता के अनुसार उतना ही पकावें और खरीदें जितनी चाहिए। स्वास्थ्य को बिना खराब किए ये चीजें सस्ती ही बैठेंगी। फल और तरकारियां विशेषकर हरी पत्तीदार तरकारियां सबसे आवश्यक हैं। आप सस्ती तरकारियां मेथी पालक मूली शलजम लीजिए, सस्ते फल खूब खाइए। महंगे फलों के स्थान पर अमरूद टमाटर नाशपाती खीरा गन्ना ककड़ी खाइए। सूखे मेवों के स्थान पर सस्ते मेवे अखरोट मूंगफली खोपरा किशमिश लीजिए। यदि विवेकपूर्वक आप भोजन का चुनाव करें तो वह सस्ता और पौष्टिक हो सकता है। स्वाद तथा चटोरी आदतों वाला भोजन त्याग दीजिए। क्रीम हलवे तथा होटल की प्लेट लेना छोड़ दीजिए। चाट पकौड़ी की ओर दृष्टि न कीजिए। जीवन रक्षक भोजन के लिए इन पांचों की व्यवस्था कर रखिए। गेहूं चावल पांच तरह की दालें अच्छा साफ गुड़ घी या मक्खन दूध शाक तरकारियां और कुछ सूखे मेवे। मौसम के फल खाया कीजिए। ऊंचे दर्जे के शक्ति उत्पादक पदार्थ ये हैं अखरोट बादाम काजू नारियल चिरौंजी पिस्ता मूंगफली किशमिश खजूर। मुनक्का से उत्तम चीनी प्राप्त होती है। मुनक्का किशमिश अंजीर से उत्तम लोहा मिलता है। मिर्च का प्रयोग त्याग दीजिए। यह उत्तेजक और पाचन शक्ति को निर्बल करने वाला मसाला है। यदि आप चाय सिगरेट पान होटल सिनेमा चाट पकौड़ी मित्रों के साथ चटोरे भोजन छोड़ देंगे तो रक्षात्मक भोजन खरीदने के निमित्त यथेष्ट धन बचा सकेंगे। अभक्ष्य पदार्थ खाकर आप क्यों आत्महत्या करते हैं? पौष्टिक अन्न लीजिए जिनसे शरीर में बल उत्साह और स्फूर्ति होती है, रोग दूर भागते हैं और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। विलास आरामतलबी और मिथ्या दर्प की वस्तुओं से रुपया बचाना आपके विवेक पर निर्भर है। यदि संभव हो तो जीवन रक्षक पदार्थों की मात्रा अधिक कर दीजिए और अधिक ऊंचे दर्जे की चीजें खरीदिए। साधारण भोजन के स्थान पर दूध घी और ऊंचे प्रकार के मेवों से युक्त भोजन कीजिए। फलों की मात्रा में वृद्धि कर दीजिए। दूध दो बार पीजिए। भोजन में दही भी सम्मिलित कर लीजिए। अच्छा अन्न भिन्न भिन्न प्रकार की दालें फल मेवे खरीदिए। द्रव्य खर्च करने का उत्तम तरीका यह है कि आपको अपने प्रत्येक पैसे का अधिकतम लाभ आनंद मजा आए, शरीर और आत्मा प्रसन्न हो, आपके बच्चे पत्नी और स्वयं आप शरीर से पुष्ट रहें। इसके लिए प्रत्येक पैसे का सदुपयोग कीजिए। ऐशाराम विलासिता फैशन खान पान में असंयम करना दूरदर्शिता और बुद्धिमानी नहीं है। शराब गांजा चाय मांस में पैसा व्यय करना अपव्यय है। मिज़िरो काबिडेन ने सत्य ही निर्देश किया है, दुनिया में अमीर गरीब का भेद नहीं है। अमीर गरीब का यथार्थ नाम मितव्ययी और अपव्ययी है। जो विवेकशील बचाने के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वे एक न एक दिन अवश्य समृद्ध बन जावेंगे और जिन्हें फूंकने उड़ाने का चस्का है वे गरीब रहेंगे। खर्च के विषय में सावधान रहने वालों ने मिल कारखाने और जहाज बनवाए हैं। एक तुम हो जो शराब पीने और दूसरी बेवकूफियों में पैसे समाप्त कर देते हो। बेवकूफियों से केवल भोजन की ही नहीं वस्त्र मकान मनोरंजन सबकी असावधानियों से बचिए। बेवकूफी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिताहारी बनिए। अपनी आयु, शरीर, क्षुधा के अनुसार सादा और ताज़ा अल्पाहार करने वाला व्यक्ति बल और आयु की वृद्धि कर प्रसन्नता और आरोग्य लाभ करता है। अति भोजन करने वाला पेटू होता है, जो केवल स्वाद और जिह्वा के वशीभूत होकर अनावश्यक बोझ अपनी आंतों पर डालता है। जीने के लिए खाए, खाने मात्र के लिए जीवित मत रहिए। अति भोजन से भांति भांति की बीमारियां फैलती हैं, सुस्ती और काहली आती है, कठोर कार्यों में दिल नहीं लगता, अतिरिक्त अंश को पचाने में बहुत सी जीवन शक्ति क्षय हो जाती है और स्वप्नदोष प्रारंभ हो जाता है। तन और मन दोनों रोगी बन जाते हैं और स्वार्थ और परमार्थ कुछ भी नहीं बन पड़ता। अधिक भोजन करने के दुष्परिणाम। स्वामी शिवानंद जी ने ठीक लिखा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि जितनी बढ़ाई जाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं और जितनी कम की जाएं उतनी की कम हो जाती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, दो बार संभल कर खाने वाला बुद्धिमान और भाग्यवान है और इससे अधिक बैठकर खाने वाला महामूर्ख, अभागा और पशु का भी पशु है। सच है, गले तक खूब ठूंस कर खाना तथा फिर पछताना कौन बुद्धिमान है। जिस भोजन से दुख उत्पन्न होता है वह विषतुल्य समझना चाहिए। डॉक्टर जीरो स्थाक फेडन कहते हैं, आजकल साधारण लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थों का सत्यानाश कर डालते हैं उनके चतुर्थ अंश से ही उनका कार्य बड़े मजे से चल सकता है। अकाल में अन्न के अभाव में लोग उतने नहीं मरते जितने काल में अन्न खाने से तरह तरह के रोगों से मर जाते हैं। मनु महाराज ने कहा है, अनारोग्यम अनामुष्यम अगवर्ग्य चाति भोजन अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्या तत्पर विजयेत। अति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, आयु को घटाने वाला, नर्क में पहुंचाने वाला, पाप को कराने वाला और लोगों में निंदित करने वाला है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सुस्वाद पदार्थों के फेर में न पड़कर आवश्यकता से अधिक कदापि न खाएं, क्योंकि वैसा अधर्म है। अधिक भोजन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें देख लीजिए, प्रथम तो अजीर्ण या बदहजमी है, पेट बाहर निकल आता है, भूख नष्ट हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में भारीपन प्रतीत होता है, मोटापन बढ़ता है। दूसरा भयंकर रोग आंत्रपुच्छ वृद्धि अपेंडिसाइटिस है, जो अयुक्त आहार से संबंधित है। जो व्यक्ति अम्लकारक, श्वेतसार और प्रत्यामिन अधिक और खनिज लवण वाले पदार्थ कम खाते हैं वे इस रोग से परेशान रहते हैं। अम्ल की अधिकता हो जाने से पाचन प्रणाली साफ नहीं रह पाती, अंदर ही अंदर एकत्रित होता जाता है और इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त पक्वाशय संबंधी अन्य रोग जैसे मधुमेह इत्यादि भी आक्रमण करते हैं। श्री जीवानंद श्रीवास्तव ने अति भोजन के दुष्परिणामों में वृक्क विकार भी बताया है। आप लिखते हैं, वृक्क विकार बहुत दिनों तक अधिक प्रत्यामिन, विशेषकर मांस, अंडा खाने वालों के बारे में आती है। तोंद का बढ़ना और आंतों का स्थान भ्रष्ट होना तो सदैव अति भोजन करने, पेट का व्यायाम न करने का ही परिणाम होता है। लोग अप्राकृतिक और स्वादिष्ट पदार्थों का ही ज्यादा शौक करते हैं और अधिक खाते हैं। वस्तुतः लोग प्रयत्न करके भी प्राकृतिक पदार्थों को उनके मूल रूप में अधिक नहीं खा सकते, क्योंकि स्वाद बाधक होता है और पेट भी विद्रोह करने लगता है। आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में खा लेने पर भूख और इच्छा दोनों शांत हो जाती है। 19. अल्पाहार दीर्घायु का रहस्य। संयत एवं परिमित मात्रा में खाने से हम अपनी शरीर रूपी मशीन के लिए केवल आवश्यक तत्व ही खींचते हैं, सड़ने और व्यर्थ पड़े रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रोटीन वाले पदार्थों को अधिकाधिक खाने का लालच होता है, इनके विषय में अपने लालच को रोकें और दो छटांक से अधिक एक बार में लेने का प्रयत्न न करें। शर्करा, श्वेतसार और प्रोटीन सदा संयत और परिमित मात्रा में ही लें। खनिज लवण वाले पदार्थ हमेशा स्वास्थ्यकर होते हैं और उन्हें अधिक मात्रा में लेना प्रायः असंभव सा होता है। शर्करा, शक्कर या चीनी से सावधान। देखने में सफेद, खाने में मीठी किंतु गुण में प्रत्यक्ष विष सरीखी इस जहरीली चीज से सावधान। चीनी का अधिक प्रयोग अनेक रोगों को दावत देने जैसा है। सफेद चीनी, छठे चावल तथा मैदा की वृद्धि के अनुपात में सारी दुनिया में मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं। चीनी मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। यदि मैदा के बदले बिना छना आटा काम में लाया जाए और सफेद चीनी के बजाय गुड़ काम में लाया जाए तो मनुष्य की खुराक में विटामिन बी शून्य की न्यूनता नहीं रह जाती। चीनी से गुड़ सदैव उत्तम है। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के एक भाषण का अंश देखिए, मैंने सन 1920-21 में चीनी को राजनैतिक कारणों से छोड़ा था, पर भोजन शास्त्र का अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि इससे अधिक घातक पदार्थ हमारे शरीर के लिए दूसरा नहीं हो सकता। यह हमारे शरीर में पहुंचकर आंतों में जलन उत्पन्न कर देती है। जो जीभ के स्वाद के वश में नहीं है और स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें कहूंगा कि चीनी खाने की मूर्खता में न पड़ें। सफेद चीनी से सभी क्षार निकल जाते हैं और फिर वह शरीर के लिए उपयोगी होने के स्थान पर हानिकारक हो जाती है। इसलिए आप गुड़ खाएं या लाल शक्कर खाएं। चीनी का तो इस देश से बहिष्कार हो जाना चाहिए, मनुष्य जितना खा लेता है उसका तिहाई भी नहीं पचा पाता। शेष पेट में रहकर नाना प्रकार के जीर्ण रोग उत्पन्न करता। रिक्तविकार होने से शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां या काले काले दाग हो जाते हैं। फालतू भोजन को निकालने में ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और शरीर की मशीन की व्यर्थ ही घिसाई होती है। जल्दी जल्दी खाने से मनुष्य दुखी, मलिन, कामी, पेटू, अतृप्त, रोगी, क्रोधी और चिड़चिड़ा बन जाता है। अतः धीरे धीरे और अल्प मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। 20. भोजन के समय की मनःस्थिति। भोजन करते समय मनःस्थिति बड़ी सावधान रखिए। मनःस्थिति उत्साह, प्रेम, सहानुभूति, प्रसन्नता से परिपूर्ण रखिए। मित्र हों तो उनसे कोई अच्छे विषय छेड़िए। पत्नी से प्रेमपूर्ण विषय पर वार्तालाप कीजिए। बच्चों से निर्दोष हंसी कीजिए। जब भोजन सामने आए तो उच्च मनःस्थिति द्वारा उसमें शुभत्व की पवित्र भावना प्रवाहित कीजिए। हमारे यहाँ भोजन को नमस्कार करने की पद्धति बड़ी मनोवैज्ञानिक है। नेत्र मूंदकर आपको मन ही मन कहना चाहिए, हे प्रभो, यह भोजन आपको समर्पित है। अपने पवित्र स्पर्श द्वारा इसे पवित्र, सुस्वादु, पौष्टिक एवं अमृतमय बना दीजिए। मुझे इससे स्वास्थ्य, बल, पौरुष, दीर्घायु प्राप्त होगी। आपके प्रत्येक कौर के साथ उत्तम भावनाएं भी भोजन के साथ मिश्रित होकर शरीर में पहुंचनी चाहिए। आप सोचते रहिए, इस कौर को चबाकर मैं अपने शरीर में पौष्टिक तत्व पहुंचा रहा हूं। यह भोजन मेरे लिए अमृत का स्रोत है, सुख तथा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा मुझे आरोग्य, बल एवं शक्ति मिल रही है। जब आप दूध या जलपान करें तो अपनी शुभ भावनाओं का प्रवाह पवित्रता की ओर रखिए। आप मन में सोचिए, प्रत्येक घूंट के साथ मैं अपार शक्ति, पौरुष, बल पान कर रहा हूँ, निरंतर बलवान बनता जा रहा हूँ। इस दूध या जल से मुझ में पुष्ट रक्त बनेगा, जिससे पवित्र मांस, मज्जा, रस, वीर्य की उत्पत्ति होगी। मैं शारीरिक सौंदर्य और बल से युक्त हो जाऊंगा और अक्षय यौवन, अमित सुख, दीर्घायु और इंद्रिय मन की शुद्धि प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार के पुष्ट और पवित्र संकेत देने तथा पवित्र मनःस्थिति रखने से आपके भोजन का अणु अणु शक्ति से युक्त हो उठेगा और आप अपने में स्फूर्ति और बल का अनुभव करेंगे। 21. कुदृष्टि से सावधान रहें। हिंदू धर्म शास्त्रों में भोजन की आंतरिक स्वच्छता पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार नीच विचार के व्यक्ति के हाथ का बना भोजन त्याज्य है, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन निरंतर उनके गुप्त मनोभावों द्वारा प्रभावित होता रहता है। इन्हीं विचारों से सावधानी रखने के लिए ही हमारे यहाँ एकांत में भोजन करने का विधान है। भोजन पर नीच, दरिद्री, भूखे, रोगी, लंपट, अधर्मी, मुर्गे, सर्प, कुत्ते और किसी भी द्वेष, घृणा, क्रोध से युक्त व्यक्ति की दृष्टि पड़े तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव उंगली के पोरुओं से होता है। जिस भोजन को बार बार छुआ गया है उसमें बनाने वाले की मानवीय विद्युत प्रवाहित रहेगी। पास बैठने वालों की मानवीय विद्युत निरंतर पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति लुब्ध नेत्रों से आपकी थाली देखता है तो वह अपनी कुदृष्टि से उसे विषैला बना देता है। इसी प्रकार परोसने वाले का शारीरिक और मानसिक गुण अनिवार्यतः भोजन पर निरंतर पड़ता है। यदि भोजन पकाने या परोसने वाला आपका प्रेमी, हितैषी, सहानुभूति रखने वाला है तो साधारण भोजन अमृत होकर आपको अच्छे फल देगा। अतः हिंदू धर्म शास्त्र में भोजन पर माता पिता, बंधु, पुण्यात्मा, पत्नी, वैद्य, हंस, मयूर और चकवे की दृष्टि पड़ना शुभ है।